नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आज 11 राज्यों के नगर निगम आयुक्तों और चयनित जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आज पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। इसराइल ने गाजा के लिए मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इरेज क्रॉसिंग फिर से खोले जाने की अनुमति दी। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में देश के पूर्वी और तटीय क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। निर्वाचन आयोग आज 11 राज्यों के उन जिलों के चुनाव अधिकारियों और निगमायुक्तों के साथ बैठक करेगा जहां पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा था। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श होगा। देश के कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम मतदान के समाधान के लिए लक्षित और विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बैठक में राज्यों के कुछ चयनित जिलों के चुनाव अधिकारी भाग लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बैठक में कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदान जैसे विषयों के समाधान के लिए लक्षित और विशिष्ट कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और झारखंड शामिल हैं, उनमें राष्ट्रीय औसत 67.40% से कम मतदान हुआ। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम मतदान वाले 50 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 17 महानगरीय क्षेत्रों या प्रमुख शहरों में पाए गए। इसके अलावा विशिष्ट मुद्दों पर विचार विमर्श करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रति रणनीति विकसित करने के लिए 9 राज्यों में सबसे कम मतदान वाले 50 से अधिक ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की भी पहचान की गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन कार्य कल सम्पन्न हो गया। प्रमुख प्रत्याशियों में जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी ने कल पर्चे भरे। जम्मू कश्मीर के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। जम्मू कश्मीर में शनिवार को पर्चों की जांच होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। मतदान इस महीने की 26 तारीख को होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 109 उम्मीदवारों ने कुल 157 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन कल 56 उम्मीदवारों ने 84 नामांकन पत्र दाखिल किए। आज इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। वहीं प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक 2,60,000 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र थानों में जमा किए गए हैं। इसी तरह 6,58,00,000 रूपये से ज्यादा नकद राशि सहित करीब 63,50,00,000 रूपये मूल्य की विभिन्न सामग्री भी जब्त की गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
असम में दूसरे चरण के मतदान के लिए 65 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। भाजपा की ओर से असम के परिवहन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य, सांसद कृपानाथ मल्लाह और दिलीप साइकिया चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने नौगांव सीट से सांसद प्रद्युत बोर्दोलोई को फिर से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए 3 नए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने वडोदरा से जसपाल सिंह पडियार, जूनागढ़ से हीरा भाई जोतवा और सुरेंद्रनगर से ऋतिक भाई मकवाना को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल केरल में कासरगौड़ का दौरा किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार एमएल अश्विनी के समर्थन में जनसभा में कांग्रेस को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के सहयोग के बिना आम चुनाव का सामना करने की चुनौती दी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों की श्रृंखला में आज हम तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र से एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। राजधानी चेन्नई में लोकसभा की 3 सीटें हैं, उत्तरी चेन्नई, मध्य चेन्नई और दक्षिण चेन्नई। इस सीट पर 20 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। ये एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट से कई बड़े नेता चुनाव जीत चुके हैं, जिनमें 1957 के चुनाव में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी मुख्य हैं। एक रिपोर्ट।
इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र विरुगम्बक्कम, सैदापेट, टी नगर, मायलापुर, वेलाचेरी और शोलिंगन नल्लूर हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में 41 उम्मीदवार मैदान में होंगे। 2021 में 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर डीएमके और 1 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने तेलंगाना और पुदुचेरी के पूर्व राज्यपाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ तमिलिसाई सौंदर्यराजन को वर्तमान सांसद टी सुमिति उर्फ थमिजाची थंगा पांडियन के खिलाफ मैदान में उतारा है। डॉ जे जयवर्धन भी मैदान में है। लोकसभा के इतिहास को देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुराई, देश के पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, अभिनेत्री वैजयंती माला बाली, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन इस संसदीय क्षेत्र से जीत चुके हैं। डीएमके ने यहां से 9 बार, कांग्रेस ने 4 बार और एआईएडीएमके ने 3 बार जीत दर्ज की है। इस बार चुनाव में कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि तीनों मुख्य उम्मीदवार तमिलनाडु की राजनीति की जानी मानी हस्तियां हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी को 45-45 मिनट दिए जाएंगे। 6 राष्ट्रीय पार्टियों को 5.5 घंटे के प्रसारण का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए प्रसारण समय आवंटन के कार्य के लिए बैठक कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित की गई। राजनीतिक दलों का यह प्रसारण इस महीने की 16 और 23 तारीख को तथा अगले महीने 3, 10, 17, 22 और 29 तारीख को किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में लोकसभा चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज राजस्थान के चुरू में भाजपा उम्मीदवारों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल पुष्कर में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल चित्तौड़गढ़ में रैली को संबोधित किया। रिजर्व बैंक आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक बुधवार को शुरू हुई। समिति की कुल 6 बैठकें इस वित्त वर्ष में होनी हैं। पिछली बार रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी और इसे 6.5% कर दिया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने करदाताओं को मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए 1 अप्रैल 2024 से अपने आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 जैसे आयकर आमतौर पर करदाता रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग करते हैं। ये इस महीने की 1 तारीख से ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। कंपनियां आईटीआर 6 के जरिए भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए अब तक लगभग 23,000 आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आईटीआर 3, 5 और 7 दाखिल करने की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सीबीडीटी का कहना है कि ये पहली बार है जब आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से अपना रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। कर अदा करने की निर्बाध सेवा प्रदान करने की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
इसराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा तक अधिक मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इरेइस क्रॉसिंग फिर से खोले जाने की अनुमति दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत में गाजा की स्थिति पर विचार विमर्श के बाद क्रॉसिंग खोलने का फैसला किया गया। एक रिपोर्ट।
बेथनून के नाम से प्रचलित एरेज क्रॉसिंग इसराइल और उत्तरी गजा पट्टी के बीच की सीमा क्रॉसिंग है। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फलस्तीनी हमास गुट के आतंकी हमले के बाद इसे पहली बार खोला जा रहा है। मंत्रिमंडल ने गजा तक अधिक सहायता पहुंचाने के लिए इसराइल का अश्दोद बंदरगाह इस्तेमाल में लाए जाने की भी मंजूरी दी है। इससे पहले इसराइल ने सभी सीमा क्रॉसिंग पर नियंत्रण सख्त कर दिया था और गजा से आने जाने के सभी हवाई और समुद्री मार्ग बंद कर दिए थे। युद्ध शुरू होने से पहले एरेज और केरेम शैलोम क्रॉसिंग उपयोग में जाते थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि ये सकारात्मक कदम है, लेकिन देखना होगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है। उन्होंने कहा कि युद्ध से तबाह गजा पट्टी में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम और बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाए जाने की जरूरत है। समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना।
विदेश मंत्रालय ने रोजगार के सिलसिले में कंबोडिया जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि केवल अधिकृत एजेंट के जरिए ही कंबोडिया जाने का आवेदन करें। मंत्रालय का कहना है कि कंबोडिया में नौकरी के आकर्षक प्रस्तावों के फर्जी वायदों के लालच में आकर भारतीय नागरिक मानव तस्करों के जाल में फंस रहे हैं। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और तटीय क्षेत्रों में अगले दो दिन के लिए गर्म हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कल तक गर्म हवाएं चलने की आशंका है। रविवार तक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज बारिश और तूफान जारी रहेगा। दिल्ली में मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से पराजित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं कनकलता।
धन्यवाद चंद्रिका। जनसत्ता की बड़ी खबर है अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, परमाणु आयुध संघ हमला करने में सक्षम। हरिभूमि में राष्ट्रपति मुर्मू का बयान है, कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता। देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी का राष्ट्रपति ने शुभारंभ किया। सुलभ और सस्ती थेरेपी मरीजों को नया जीवन देने में सक्षम होगी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कैंसर का अब हुआ स्वदेशी इलाज, खर्च में करीब 10 गुना कमी आएगी। राजनीतिक हलचल और आगामी चुनावों की तैयारियों में लगे विभिन्न दलों की चर्चा लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर की है। वीर अर्जुन के शब्द हैं, एक ही दिन में गिरे कांग्रेस के 3 विकेट, आरोप प्रत्यारोप भी बड़ी खबर बने हैं। हिन्दुस्तान की खबर है, गेहूं का स्टॉक 3 साल के उच्चतम स्तर पर। ताइवान में आए भूकंप के बाद लापता दोनों भारतीयों के सुरक्षित होने की खबर कुछ अखबारों में है। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर लिखा है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग लद्दाख में, दोनों पायलट सुरक्षित, मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, आंकड़ों में पारा भले कम पर गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है, दक्षिण में भी यही हाल है। अखबार ने आंकड़ों के साथ देश के विभिन्न इलाकों में मौसम की स्थिति पर आकलन दिया है। देशबंधु ने लिखा है, पूर्वोत्तर भारत में 7 तारीख तक भारी बारिश के आसार। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, मौसम की मनमानी, पहाड़ों पर बर्फबारी ने रास्ते रोके, मैदानों में गर्मी दिखा रही है तेवर। नवभारत टाइम्स की खबर है, सोने ने पकड़ी रफ्तार, हुआ 70,000 के पार।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आज 11 राज्यों के नगर निगमायुक्तों और चयनित जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आज पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। इसराइल ने गाजा के लिए मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एरेज क्रॉसिंग फिर से खोले जाने की अनुमति दी। मौसम विभाग ने अगले दो दिन देश के पूर्वी और तटीय क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।